पृष्ठ संख्या 16, काव्य वस्तु एक राम की शक्ति पूजा और दो अंधेरे में। एक, सूर्य के अस्त होने के साथ आज दिन भर चलता रहा राम रावण का अप्रतिम अनिर्णित युद्ध इतिहास की अमर युद्ध गाथा बनकर रह गया। इस महायुद्ध की झलक इन संकेत चित्रों के द्वारा पाई जा सकती है। दोनों पक्षों से तीक्ष्ण बाणों का क्षिप्रता और प्रखर वेग के साथ प्रयोग किया जाना, तत्शत बरछों भालों के आघातों को सहने की क्षमता का प्रदर्शन, आकाश का योद्धाओं के गर्जन तर्जन से गुंजायमान होना, दोनों पक्षों द्वारा क्षण क्षण सैन्य व्यूह की रचना का परिवर्तित किया जाना तथा दोनों की ओर से नई व्यूह रचनाओं को तोड़ने के अनेकानेक उपाय किया जाना, वानर सेना के द्वारा राक्षसों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अवरोध के प्रयत्न और उनमें विफल होने पर क्रुद्ध वानरों की भयंकर विक्षोभी अभिव्यक्ति, नीलकमल जैसे नेत्रों वाले राम के नेत्रों का रोष एवं विक्षोभ से अंगार के समान लाल हो जाना और उनके द्वारा लक्ष्य लेकर ऐसे बाणों का प्रयोग किया जाना जो रक्त के समान लाल नेत्र वाले रावण का दर्प तोड़ने में सक्षम थे। राम के द्वारा इस प्रकार त्वरित शर प्रक्षेपण और रावण के द्वारा उनके निवारण के अनवरत क्रम में दिन के दोपहर का व्यतीत हो जाना, प्रचंड रावण के द्वारा वानर सेना का दलन और उसका बिखर जाना और रावण के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले राम जिनके शरीर से रक्त बह रहा है और जिनकी मुट्ठी धनुष पर कसी हुई है का अपने विश्वविजयी दिव्य बाणों को विखंडित होते देखकर विस्मय विजड़ित हो जाना, रावण के अप्रतिरोध्य प्रहार से वानर सेना का विकल होना और सुग्रीव, अंगद, विभीषण, गय, नल आदि वानर प्रमुखों का लक्ष्मण, जंबुवान तथा असंख्य योद्धाओं के द्वारा रावण को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किए जाने के बावजूद आहत मूर्छित होना, गरजते हुए प्रलयकालीन समुद्र एवं आग उगलने वाले विशाल ज्वालामुखी पर्वत के समान विक्षुब्ध हनुमान का चारों प्रहर गरजते रहना जो सीता की सुरक्षा के लिए भयभीत राम के कतार हृदय को आशान्वित किए रहने तथा रावण को निरुद्ध किए रखने का एकमात्र कारण था। पृष्ठ संख्या 17, राम और रावण की सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर लौटने लगी। दर्पोन्मत्त राक्षस सेना के पदाघात से धरती कांपने लगी और उनके अतिशय उल्लास से अवकाश व्याकुल हो उठा। अवसादग्रस्त वानर सेना अपने गुल्मपतियों के पीछे पीछे विरक्त बौद्ध भिक्षुओं की भांति अपने शिविर की ओर जा रही थी। शिविर में अस्तब्धता छाई है, सांध्य शूल ढल रहा है या कमल संपुटित हो रहा है और लक्ष्मण मानो उन्हीं के समान और नमित मुख मुद्रा में चिंता मग्न है जिनके पीछे वानर योद्धा बैठे हुए हैं। नवनीत जैसे कोमल चरणों वाले राम धरती पर आगे बैठे हुए हैं, उनके धनुष की प्रत्यंचा ढीली है, तरकस का धारक कमरबंद सरका हुआ है, सुदृढ़ रूप से बंधे जूड़े का मुकुट अस्त व्यस्त हो गया है और प्रत्येक लट खुल जाने के कारण उनके घने केश उनकी पीठ भुजाओं तथा उनके वक्ष पर फैले हुए हैं। शरीर पर कुछ श्वेत बिंदु भी झलक रहे हैं। ऐसा लगता है मानो विशाल दुर्गम पर्वत पर रात का घना अंधकार उतर आया हो, जिनके बीच कहीं बहुत दूर तक छोटे छोटे तारे चमक रहे हों। सुग्रीव, विभीषण, जंबुवान, अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष तथा अन्य गुल्मपति वानर सेना को आश्रय स्थल की ओर लौटाकर अगले दिन के युद्ध के विषय में समुचित रणनीति पर विचार करने के लिए मंद गति से शिविर में आए जो पर्वतीय क्षेत्र की किंचित चौरस भूमि में बनाया गया था। राम स्फटिक शिला पर बैठे हैं, हनुमान उनके करपद प्रक्षालन के लिए जल लाते हैं, अन्य योद्धा संध्या आदि करके शीघ्र ही लौट आते हैं और राम को घेर कर उनका आदेश सुनने के लिए सावधान होकर बैठ जाते हैं। राम के पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, जंबुवान तथा सुग्रीव, चरणों के पास हनुमान, अन्य युद्धपति यथास्थान। सभी राम के कमल जयी मुख की ओर अपलक देख रहे हैं, जो इस समय किंचित श्रीहीन हो रहा है। रात अमावस्या की है, अंधकार प्रतिक्षण गहनतर होता जा रहा है। अंधकार में दिशा बोध असंभव होता जा रहा है। वायु का संचरण थम गया है। पीछे विशाल समुद्र निर्बाध रूप से गर्जना कर रहा है। पर्वत ध्यानमग्न योगी के समान स्वकेंद्रित है। इस सारे विचलित अस्तब्ध परिवेश के बीच केवल एक मशाल जल रही है। सामान्यतः स्थिर चित्त रहने वाले राम रावण की विजय से संशयाकुल हो रहे हैं। राम का वह मन जो असंख्य सहस्त्रों हो या कि लक्षाधिक शत्रुओं के समक्ष अकेले होते हुए भी कभी विचलित नहीं हुआ था, अगले दिन के युद्ध के विषय में विचार करते हुए व्याकुल हो रहा था। और उसे अपनी उत्साहपूर्ण तैयारी के बावजूद अपने सामने केवल पराजय दिखाई पड़ रही थी। सहसा ही राम के निराशांध मन पटल पर भूमिजा सीता की छवि घना अंधकार में बिजली की कौंध के समान उभर आती है। राम मन की आंखों से निनिर्मेष उसे निहारने लगते हैं। उन्हें स्मरण हो आता है पुष्प वाटिका में पहली बार निकुंजों की झीनी दृश्यमानताओं के बीच सीता के नेत्रों से उनके नेत्रों का मिलना और दोनों के बीच एक गोपनीय प्रणय भाव का उद्बद्ध होना। दोनों की पलकों के उत्थान पतन के विलंबन से अब तक अननुभूत प्रथम प्रेमानुभव का उद्रेक। पुष्पों उद्यान के लहरते हुए पल्लव, खिलते फूलों से बिखरते उड़ते परागकण, प्रातः जागरण के नवोल्लास से परिपूर्ण पक्षियों का कलरव, चंदनी महक से अवेष्टित द्रुमदल, अंतरिक्ष से झरता हुआ दिव्य आलोक का निर्मल झरना और सीता के सुंदर नेत्रों में उत्पन्न होने वाला वह रागात्मक चांचल्य, जो किसी नारी के नेत्रों में प्रिय पुरुष के द्वारा उसकी सौंदर्य संसा का परिणाम होता है, और जो प्रणयी पुरुष के लिए अपनी प्रिया की प्रणय स्वीकृति का प्रतीक होने के कारण कैवल्य अत्यंतिक सुख के समकक्ष होता है। राम रोमांचित हो उठे। पल भर के लिए वह अपनी वर्तमान स्थिति को भूल गए। उमंग में भरकर उनका हाथ मानो एक बार पुनः शिव धनुष पृष्ठ संख्या 18 को तोड़ने के लिए फड़कने लगा। सीता के ध्यान में मग्न राम के अधरों पर मुस्कान की रेखा उभरी। एक बार वह पुनः विश्व विजय के आत्मविश्वास से भर उठे। उन्हें अपने उन मंत्रों से पवित्र किए हुए अग्रित दिव्य बाणों का स्मरण हो आया, जो युद्ध में देवदूतों के समान पंख फड़काकर आकाश में उड़ा करते थे। राम के मानस नेत्रों में वह अतीत साकार हो उठा, जब उनके बाणों की ज्वाला में ताड़का, सुबाह, त्रिशिरा, खरदूषण आदि निशाचर जलने लगे थे। इसी क्रम में उन्हें आज के युद्ध में समूचे आकाश पर छाई हुई शक्ति की भयंकर मूर्ति का स्मरण हो आया, जिसके विराट व्यक्तित्व में उनके सभी दिव्यास्त्र निष्प्रभ होकर विलीन हो गए थे। असीम शक्ति संपन्न शेषशायी राम शक्ति के उस भयावह रूप को मन नेत्रों से देखते ही संशयाकुल हो उठे और उनके समक्ष सीता के वे कतार नेत्र उभर आए, जिनमें राम की छवि समाई हुई थी। साथ ही उन्हें रावण का दर्पपूर्ण निर्मम अट्टहास भी सुनाई पड़ा। राम अपनी असहाय स्थिति के यथार्थ बोध से व्याकुल हो उठे और उनके भाव विह्वल नेत्रों से मोती के समान दो अश्रुकण ढुलक गए और उनके भाव विह्वल नेत्रों से मोती के समान दो अश्रुकण ढुलक गए। हनुमान राम के चरण कमलों के निकट बैठे हुए उन्हें निहार रहे थे। वह इस सत्य तक पहुंचकर भाव विह्वल हो रहे थे कि राम के चरणों में आस्तिकता नास्तिकता के दार्शनिक परस्पर विरोधी विचार एकान्वित हो जाते हैं, कि वह निष्कलंक गुणों की राशि हैं, कि राम लोक जीवन की साधना में भी समता की दृष्टि का निर्वाह करते हैं, जो उनकी पालथी मारकर बैठने की मुद्रा से व्यंजित हो रहा है। बायां हाथ दाहिने चरण पर और दाहिनी हथेली पर, बाएं चरण का तलवा वाम और दक्षिण शत्रु और मित्र के प्रति समरसता का यह बोध उनके लिए परम आनंददायक था और वे राम के इस सच्चित आनंदमय और परम शांतिदायी रूप को हृदयंगम करते हुए एक निष्ठ भाव से मन में राम का नाम जप रहे थे। अस्तु राम के दो अश्रुकण उनके चरणों पर टपक कर गिरे। हनुमान ने उन्हें देखा तो उन्हें लगा कि आकाश में दो तारे चमक उठे हैं अथवा ये चरण राम के न होकर श्यामा शक्ति के चरण हैं, जिनके बीच आभूषणांग के रूप में दो हीरे या कौस्तुभ मणियाँ सुशोभित हो रही हैं। हनुमान की ध्यानात्मक कल्पना खंडित हुई, उनका मन व्याकुल हो उठा। कुछ संदेह के साथ उन्होंने राम के मुख की ओर देखा। कमल नयन राम यथावत बैठे हुए थे, किंतु नेत्र अस्त्रपूर्ण थे। उनका सदैव प्रसन्न रहने वाला मुख किंचित कतार और क्लांत बेसुध सा था। हनुमान की समझ में यह आने के साथ कि ये राम के आंसू हैं, उनके आभ्यंतर में प्रसुप्त पड़ा अपार शक्ति का लीलामय समुद्र उद्वेलित हो उठा। पिता के उत्तराधिकार में प्राप्त 49 मरुतों का वेग सघन होकर एक साथ उनके वक्ष से उद्यम अंधड़ के रूप में प्रवाहित होने लगा, जिसके प्रवेग से समुद्र का जल वाष्प बनकर उड़ने लगा। उसमें चक्कर खाते हुए शत शत आवर्त बनने लगे। ऊंची ऊंची तरंगे आपस में टकराने टूटने लगीं। जलराशि के भीतर से पहाड़ उभरने लगे। विशाल जलराशि पर राशि राशि जल पछाड़ खाता हुआ चढ़ने लगा। आवेश और आक्रोश से तने चौड़े वक्ष वाले हनुमान धरती की सीमा रेखा कक्षा को तोड़ते हुए सृष्टि विजय का लक्ष्य लेकर प्रतिपल आगे बढ़ने लगे। उनकी गति में वायु से 100 गुना वेग था। धरती पाताल बन गई थी। वायु के प्रलया वेग से समुद्र जल आलोडित विलोडित होने लगा और भयंकर कोलाहल वायु में गुंजित होने लगा। वज्र शरीरी हनुमान पवन को सघन तेजस्विता प्रदान करते हुए एकादश रुद्रों की संपूर्ण शक्ति के साथ विक्षोभपूर्ण अट्टहास करते हुए परम व्योम में पहुंच गए। हनुमान अब शक्ति के सामने हैं। शक्ति अमानिशा के अंधकार जैसी कृष्णा है जो रावण का पक्ष ले रही है और उसके तमोगुणी व्यक्तित्व की प्रतीक भी है, उसके प्रतिपक्ष में है। और परम पृष्ठ संख्या 19 तेजस्वी रुद्रावतार हनुमान, जिनमें राम भक्ति और राम के द्वारा शिव पूजन की भास्वरता उद्भासित हो रही है। एक ओर रावण की आराधना से प्रसन्न शिव की शक्ति है, दूसरी ओर राम के द्वारा की गई शिव की अर्चना वंदना का प्रताप है। हनुमान समूचे आकाश को ग्रस्त करने के अडिग संकल्प के साथ आगे बढ़ने लगे। विनाश की यह अत्यंतिक स्थिति देखकर अविचल रहने वाले शिव भी पल भर के लिए विचलित हो उठे। शक्ति के चरणों को अपने वक्ष पर धारण करने वाले शिव ने गंभीर स्वर में शक्ति को समझाया कि वह अपनी प्रचंडता को छोड़ दें, क्योंकि हनुमान वानर वानरी के संयोग से उत्पन्न हुआ साधारण वानर नहीं है। ये चिर ब्रह्मचारी रुद्रावतार महावीर अक्षय शरीर वाले राम भक्त के मूर्तिमान विग्रह मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सर्वोत्तम और अनन्य लोकलीला सहचर दिव्य व्यक्तित्व संपन्न है और इन पर आक्रमण करने से तुम्हारी प्रबल पराजय होगी। अतः तुम यात विद्या के सहारे हनुमान की मानसिकता को प्रभावित करो और ऐसा करने से हनुमान विनम्र हो जाएंगे और संकट टल जाएगा। शिव इतना कहकर चुप हो गए। आकाश में सहसा ही अंजना के रूप वाली नारी आकृति का उदय हुआ, जिसे देखकर हनुमान चकित हो उठे। हनुमान की माता अंजना के रूप वाली नारी ने हनुमान को अतीतकालीन उद्दंडता का स्मरण कराते हुए कहा कि उन्होंने जब सूर्य का निग्रहण कर लिया था तब वे अबोध बालक थे, किंतु उनकी वही उद्दंडता की प्रवृत्ति उनमें अब भी है और यह माँ के लिए लज्जा का विषय है कि वह बार बार अपने पुत्रों की करतूतों के लिए सबके उलाहने सहती रहे। कि वह जिस महाकाश को इस समय ग्रस लेने के लिए उद्यत हो रहे हैं उसमें उन शिव का निवास है, जिनकी पूजा स्वयं उन्हीं के आराध्य राम करते हैं। क्या उनका यह कृत्य अनर्थपूर्ण नहीं होगा कि वह इस विषय में विचार करें कि वह जो कुछ करने जा रहे हैं वह क्या राम के द्वारा आदेशित है, कि क्या उनका यह अकल्पनीय कृत्य राम के लिए सहाय होगा, क्योंकि वह राम के सेवक हैं और स्वामी के आदेश के बिना उनका यह कृत्य सेवा धर्म के विरुद्ध होगा। हनुमान का आक्रोश दमित हो गया, अंजना रूपिणी शक्ति अंतर्धान हो गई, हनुमान नीचे आए और कातरता पूर्वक राम के चरणों में प्रणत हो गए। राम के अवसादग्रस्त मुख की ओर कुछ क्षण देखते हुए उनके मित्रास्पद विभीषण ने कहा कि आज किस कारण उनके मुखमंडल पर वह प्रसन्नता का भाव नहीं है जिसे देखकर उनकी सेना के सभी वीर वानर और रेक्ष श्रांत रहित होकर देवतुल्य चिर युवा हो जाया करते थे, कि उनके तर्कश में वही बाण अक्षत रूप से विद्यमान है, कि उनके वक्ष स्थल में अब भी वही अपराजेय आत्मबल है, उनके हाथों में वही युद्ध कौशल है, उनमें वही असीम ऊर्जा विद्यमान है, कि उनके साथ वही मेघनाद जयी लक्ष्मण, वही जंबवान और उत्साहशील सुग्रीव, वही श्वेतवर्ण तारापुत्र महाबली, धैर्यवान अंगद, 10 करोड़ शत्रुओं का अकेले सामना करने में सक्षम अद्वितीय पराक्रमी, वही हनुमान, वही सारे रणकुशल चमूपति हैं और युद्ध भी वही है। अभी विजय पराजय का निर्णय हुआ ही नहीं है, फिर यह कैसा असमय अवसाद कि वह अपने रघुवंशीय गौरव को अपनी हताशा से लघुता की ओर ले जा रहे हैं, कि वह युद्ध में पीठ दिखा रहे हैं, और वह भी तब जब हमारे द्वारा युद्ध लगभग जीता जा चुका है, कि उनके सभी साथियों का अपरिसीम श्रम व्यर्थ हुआ जा रहा है, क्योंकि वह उस क्षण सीता की ओर से अपना हाथ निर्मम होकर खींच रहे हैं जब मिलन क्षण सन्निकट है, कि जन्म के समय ही महारव करने वाला कामी दुष्ट पापी आचरण भ्रष्ट रावण, जिसने उन्हें स्वयं विभीषण को उसी के हित की बातें कहने पर चरणाहत किया था, अशोक वन में इस वसंत में कोयल की कूक सुनता हुआ। पृष्ठ संख्या 20। अपने सभासदों से घिरा हुआ सीता के समक्ष अपनी विजय गाथा का बखान करके उन्हें पुनः दुखी करेगा कि वह स्वयं विभीषण राम के वादे पर विश्वास करके लंकापति बनने का स्वप्न देख रहे हैं, कि इस सारी स्थिति के लिए उत्तरदायी राम केवल धिक्कार के योग्य हैं। सभा में सन्नाटा यथावत बना रहा, राम के अधमुंदे नेत्रों में उष्मा की कोई चमक नहीं उभरी, वह अनमने से देखते रहे और विभीषण के उत्तेजक वक्तव्य में उनकी कोई रुचि ना रही हो, अथवा वह औपचारिक सहानुभूति के निर्जीव शब्द मात्र हो जिनमें गंभीर आत्मीयता का कोई भाव निहित ना हो। कुछ क्षण मौन रहने के बाद अपने सहज कोमल स्वर में राम ने अपने मित्र विभीषण को संबोधित करते हुए कहा कि वह यह युद्ध जीत नहीं सकते, क्योंकि यह नर वानर आदि और राक्षसों के बीच का युद्ध नहीं रह गया है, रावण से आमंत्रित शक्ति स्वयं उसके पक्ष में है, और यह परम दुखद है कि शक्ति अन्याय का पक्ष ले रही है। यह बताते हुए राम के नेत्र भर आए, एक बार पुनः कुछ अश्रुबिंदु उनकी आंखों से ढुलक गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, प्रचंड तेजशाली लक्ष्मण तमतमा उठे। राम के दोनों चरणों को अपनी बाहों में समेटते हुए हनुमान अपने भुजदंड मसलते हुए ग्लानि से मानो धरती में धस गए। जंबवान जैसे संपूर्ण भाव स्थिति समझते हुए शांत बैठे रहे, सुग्रीव व्याकुल हो उठे और उनके मर्म को भेद दिया गया हो। विभीषण जैसे मन ही मन कोई योजना बनाने लगे, सभी चुप थे पर भीतर भीतर एक विषम आंदोलन छिड़ा हुआ था। राम ने संयत होकर अपने सहज स्वर में कहा कि मेरे द्वारा आराधित शिव की शक्ति का यह खिलवाड़ समझ में नहीं आता, कि रावण अन्यायी अधर्मी होते हुए भी शक्ति का आत्मीय हो गया और मैं उसके लिए पराया हो गया, कि वह बार बार अपने उन तीक्ष्ण बाणों का युद्ध में प्रयोग कर रहे थे जिनसे समूची सृष्टि पर विजय प्राप्त की जा सकती थी, जिनमें परम तेजस्वी होने के कारण सृष्टि रक्षा का विवेक पवित्रता का सामान्य प्राणी से सौगुणा बोध, मनस की सूक्ष्मता न्याय बुद्धि तथा क्षत्रियत्व की पूर्ण चरितार्थता का संकल्प, ये सभी दिव्य गुण निहित थे जिन्हें दक्ष आदि प्रजापतियों ने संयम पूर्वक सुरक्षित रखा था। उनके वही बाण आज युद्ध में निष्प्रभ हो गए, काट दिए गए। राम ने बताया कि युद्ध में उन्होंने देखा कि शक्ति रावण को अपने अंक में चंद्रमा के द्वारा लांछन धारण की ही भांति निर्द्वंद रूप से लिए हुए थी और उनके द्वारा प्रयुक्त मंत्रों के पवित्र बाणों का निवारण करती जा रही थी, और इस प्रकार लक्ष्य लेकर क्षिप्रता पूर्वक किए गए उनके सारे प्रहार निष्फल होते गए कि वह वानर सेना को हिम्मत हारते देखकर जितने अधिक अमर्ष के साथ युद्धरत होते थे, शक्ति के नेत्रों की ज्वाला उतनी ही प्रखरतर हो उठती थी और अंत में वह उन्हें एकटक देखने लगी। परिणामतः उनके हाथ जड़ीभूत हो गए, पुनः धनुष की प्रत्यंचा खींची ना सकी। वह मुक्त होते हुए बंधे जैसे होने के कारण त्रस्त हो गए। राम इतना कहकर क्षण भर के लिए चुप हो गए। जंबवान ने विश्वासपूर्ण स्वर में राम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी दृष्टि में राम के विचलित होने का कोई कारण नहीं है कि पुरुष सिंह राम की शक्ति को अपने पक्ष में कर ले। रावण की शक्ति पूजा का वह दृढ़तर शक्ति पूजा से उत्तर दें। रावण की आराधना क्षमता से अधिक अपने मन की एक निष्ठता का परिचय देकर वह विजय प्राप्त करें। उन्होंने समझाते हुए कहा कि यदि रावण अनाचारी होकर भी उन्हें शक्ति की सहायता से संतुष्ट कर सका है, तो वह उसी की सहायता से अपने धर्माचरण के कारण निश्चित रूप से उसका संहार कर सकेंगे। उन्होंने पूरी योजना स्पष्ट करते हुए कहा कि राम शक्ति की आपातकाल के कारण मौलिक कल्पना करके उसका पूजन करें और सिद्धि मिलने तक युद्ध में भाग ना लें। पृष्ठ संख्या 21 की इस बीच लक्ष्मण महासेनापति के रूप में महावाहिनी के बीच में रहेंगे। उनके दक्षिण भाग में श्वेत वर्ण अंगद और वह स्वयं अपनी रीच सेना के साथ रहेंगे तथा वाम पार्श्व में हनुमान, नल, नील और अन्य वानर योद्धा अपने गुल्फपतियों के साथ महानायक की सहायता के लिए रहेंगे कि विभीषण, सुग्रीव तथा अन्य शेष सेनापति सुरक्षित सैन्य बल के रूप में रहेंगे और आवश्यकता के अनुसार रक्षार्थ कहीं भी तत्काल पहुंचने के लिए सन्नद्ध रहेंगे। जंबवान की योजना सुनकर पूरी सभा प्रसन्न हो गई। राम ने भी सम्मानपूर्वक वयोवृद्ध जंबवान की व्यूह रचना को स्वीकृति दे दी। तदुपरांत राम पुनः विचार करते हुए ध्यानमग्न हो गए और अपनी मनः कल्पना के अंतः दर्शन से उनका शरीर पुलकित होने लगा। कुछ क्षण पश्चात नील कमल को भी अपने सौंदर्य से लज्जित करने वाले उनके नेत्र खुले। यद्यपि उनका मन निर्निमेष रूप से शक्ति के ध्यान में मग्न रहा, उन्होंने उद्योग रहित श्रद्धापूर्ण स्वर में शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि वह विश्व को आलोकित करने वाली 10 भुजा उन माँ के चरणों की शरण पर निर्भर हैं जिनकी शक्ति से विंध कर दुष्ट महिषासुर अत्यंतिक पराभव को प्राप्त हो रहा है, कि उनके चरणों के नीचे गर्जना करता हुआ जो सौभाग्यशाली सिंह विद्यमान है, वह उसे अपना प्रतीक मानते हैं और वह उस स्थिति को स्वयं शक्ति का संकेत मानते हुए उसी भाव से उनका आराधन करेंगे। इतना कहकर राम कुछ क्षणों के लिए शक्ति के रूप चिंतन में मगन हो गए और उसके बाद शक्ति के कमल पत्रवत चरणों में ध्यान लगाते हुए ही अपनी पलकें खोली। मंत्री, सेनापति आदि सभी सिंह मुद्रा में बैठे राम के भावोद्वेलित किंचित मुस्कान से युक्त मुखमंडल की ओर देख रहे थे। अपनी भाव साधना में लीन चांद्राधिक सुंदर मुखमंडल वाले राम ने सभी के मन में सात्विक उद्वेलन सा उत्पन्न करते हुए अपने मेघ गंभीर स्वर में सबको संबोधित करते हुए कहा कि उनके सामने हरे पौधों और तृणों से जो श्यामल पर्वत है उसे वे परागवर्णी पर्वती के रूप में कल्पित करते हैं, कि उनके चरण प्रांत में जो गर्जना कर रहा है वह समुद्र न होकर उनका वाहन सिंह है, कि दसों दिशाएं उनके 10 हाथ हैं और उनके इस व्यक्तित्व के ऊपर आकाश में चंद्रमौली शिव सृष्टि के द्वारा मानो पूजित हो रहे हैं कि इस मंगलमय शिव शक्ति की महासत्ता को देखकर अहंकार स्वयं धरती में धसता जा रहा है और मनुष्य के मन में बैठा असद्वृत्ति का दानव खंड खंड होता जा रहा है। तत्पश्चात अपने प्रिय सेवक हनुमान को अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से आकर्षित करते हुए राम ने मानो हनुमान के हृदय में रस वर्षा करते हुए उनसे मधुर वाणी में कहा कि उन्हें अनुष्ठान के लिए कम से कम 108 नील कमलों की आवश्यकता है, उससे अधिक हो तो और भी उत्तम। उन्होंने आदेश दिया कि वह तत्काल देवीदाह जाएं, अरुणोदय काल में कमल तोड़कर शीघ्र वापस आएं और उसके बाद युद्ध में भाग लें। हनुमान जंबवान से देवीदाह के मार्ग, उसकी दूरी तथा उसकी स्थानिक पहचान की जानकारी प्राप्त करके राम के चरण धूल लेकर हर्षपूर्वक चल पड़े। राम ने सभी योद्धाओं को अपने अनुष्ठान के आरंभ का समय जानकर विदा दी। सभी की विजय की कामना करते हुए संवेदनशीलता के साथ अपने अपने शिविर चले गए। रात व्यतीत हो गई। उधर प्राची दिशा रूपी आकाश के मस्तक पर पहली किरण उदित हुई। इधर राम के मानस नेत्रों में आराधना की महिमा से स्फूर्त स्वर्णिम ज्योति का जागरण हुआ। आज राम के हाथों में न धनुष है, न उनके कंधे पर तरकस है और न ही आज उनके मस्तक पर कसकर बांधी गई घनी जटाओं का मुकुट सुशोभित है। युद्ध का गर्जन तर्जन पृष्ठ संख्या 22 अवश्य पढ़ रहा है, किंतु उससे उनका मन उत्तेजित नहीं होता। वे एकाग्रता पूर्वक शक्ति के ध्यान में लीन है। पूजा के बाद दशभुज दुर्गा के नामों का, उनसे संबंधित शक्ति के विशिष्ट गुणों का मनन करते हुए नामगत रूप का चिंतन कर रहे हैं। पहला दिन व्यतीत हुआ। शक्ति के चरणों में राम की ध्यान साधना निरंतर गहनतर होने लगी। साधना करते हुए क्रम पूर्वक 5 दिन व्यतीत हो गए। राम का निस्तंद्र मन एक चक्र से दूसरे चक्र पर ऊर्ध्वगमन करता रहा। प्रत्येक जप की पूर्ति पर एक नील कमल चढ़ाते हुए अपना अनुष्ठान पूरा करते रहे। 6ठे दिन राम का मन आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो गया। प्रत्येक जप के साथ मन सभी ओर से खींचकर त्रिकुटी पर और ध्यान दो कमल पत्रों जैसे देवी चरणों पर सघन रूप से केंद्रित होने लगा। राम के नाम उच्चार की मंद्र ध्वनि से आकाश विकंपित हो उठा। राम 2 दिन एक मुद्रा में रहे, बिना हिले डुले कमल अपरवित करते हुए नामोच्चार करते हुए। 8वें दिन राम का ऊर्ध्वगतिशील ध्यानलीन मन त्रिदेव स्तर से ऊपर पहुंच गया। ब्रह्मांड पूर्ण रूपेण विजित हो गया। देवगण विस्मय विजड़ित हो गए। जीवन साधना और आध्यात्म साधना के सारे कर्म फल भस्मीभूत हो गए। केवल एक कमल बच रहा था। राम का मन अंतिम चक्र हठ योग साधना का अंतिम गढ़ सहस्त्रार को सो उत्साह पार करने ही वाला था कि रात्रि के दूसरे प्रहर में दुर्गा चुपके से प्रकट हुई और एक चुनौती जैसी किंतु आश्वस्तिकर मुस्कान के साथ अनुष्ठान की समाप्ति के लिए अभीप्सित कमल उठा ले गई। राम शक्ति के चरणों में ध्यान लगाए हुए अंतिम नामोच्चार के साथ अनुष्ठान पूर्ति के उत्साह में भरकर अंतिम कमल उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, उन्हें वहां कमल नहीं मिलता। उनका ध्यान अवस्थित मन स्थिर हो उठता है। ध्यान का तार टूट जाता है। वह आंखें खोलकर देखते हैं तो कमल वेदिका पुष्प रहित दिखती है। यह जप का अंतिम क्षण था। आसन से उठकर वह कमल लाने जाते तो सारा अनुष्ठान व्यर्थ हो जाता। राम के नेत्रों में आंसू भर आए। राम ने अपने जीवन की इस एक और विफलता के लिए उसे धिक्कारा और उन साधनों को भी धिक्कारा जिन्हें प्राप्त करके वह अपना जीवन सार्थक बनाना चाहते थे, किंतु जो लाख प्रयत्नों के बावजूद उनके हाथ नहीं आए। सबसे बड़ी विफलता जन्य पीड़ा यह कि वह प्राण प्रिय सीता को मुक्त नहीं करा सके, किंतु राम के अवचेतन में एक और दृढ़तर मन था जो क्लांत नहीं हुआ था। वो दीनता और कायरता से सर्वथा अपरिचित था, वही मन उद्बुद्ध होकर संशय जन्य निराशा के माया जाल को छिन्न भिन्न करता हुआ बिजली की कौंध के समान राम की बौद्धिक चेतना के केंद्र में पहुंचकर सक्रिय हो उठा। राम को कुछ याद आया और समाधान पाकर सचेत और उत्साहित हो उठे। उन्होंने रूप गंभीर मेघ गर्जन जैसे स्वर में शक्ति को माँ के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि उनके पास इस संकट के निराकरण का उपाय है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें सदा राजीव नयन कहा करती थी, कि उनके पास अभी दो नील कमल शेष हैं, कि वह अपना अनुष्ठान एक नेत्र आपूर्ति करके पूरा करेंगे। इतना कहकर राम ने तरकस के दिव्यालोक संपन्न ब्रह्मशर की ओर देखकर उस चमचमाते हुए दिव्यास्त्र को बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ से दाहिना नेत्र सुस्थिर करके उत्साहपूर्वक उसे देवी की चरणों में समर्पित करने को उद्यत हो गए। नेत्र समर्पण के दृढ़ निश्चय के साथ ही ब्रह्मांड में विकंपन हुआ और तत्काल शक्ति साक्षात उपस्थित हो गई और उन्होंने राम का हाथ पकड़ लिया। राम ने श्री दुर्गा का तेजोमय रूप देखा, बायां चरण महिषासुर के कंधे पर, दाहिना चरण सिंह पर ज्योतिर्मय व्यक्तित्व, दसों हाथों में विभिन्न शस्त्र अस्त्र, मुख पर मंद मुस्कान जिसके आगे विश्व का सारा, पृष्ठ संख्या 23, सौंदर्य अपने को नगण्य अनुभव करने लगे। दक्षिण पार्श्व में लक्ष्मी और गणेश, वाम पार्श्व में सरस्वती और रण प्रणयी कार्तिकेय, सबसे ऊपर मस्तक पर शिव, राम श्रद्धा विह्वल होकर मंद स्वरों में स्तुति करते हुए देवी के चरणों में प्रणत हो गए। महाशक्ति को नवीन पुरुषोत्तम के रूप में संबोधित करते हुए उनके मुखमंडल में यह कहकर समाहित हो गई कि निश्चित रूप से विजय उन्हीं की होगी।